جی آگے سبق دیکھیے بھائی. او مقدمن عطف على قوله بعد الا اي المستثنى منصوب وجوبا اذا كان المستثنى مقدما على المستثنى منه سواء كان في كلام موجب او غير موجب نحو جاءني الا زيدا القوم وما جاءني الا زيدا احد لامتناع تقديم البدل على المبدل منه. بھائی مستثنی کی بحث چل رہی ہے اور گزشتہ سبق میں صاحب کافیہ اور صاحب جامی نے مستثنی کا اعراب بتلانا شروع کیا تھا. آپ کو میں نے ایک نقشہ بنوایا تھا اور اس نقشے سے آپ کو پتا چل گیا تھا کہ کبھی مستثنی منصوب ہوتا ہے, کبھی مستثنی مجرور ہوتا ہے, کبھی مستثنی جو ہے وہ بدل بنتا ہے, اور بعض صورتوں میں مستثنی کا اعراب علی حسب العوامل ہوگا. تو انہی میں سے اب سب سے پہلے منصوب کا ذکر شروع کیا تھا کیونکہ یہ بحث چل رہی ہے منصوبات کی, اور اسی اعراب کی وجہ سے مستثنی کی بحث کو یہاں ذکر کیا کہ اکثر صورتوں میں مستثنی منصوب ہوا کرتا ہے. تو بتلایا تھا, سب سے پہلے انہوں نے آپ کو بتلایا وہ ہوا منصوبن, کہ مستثنی منصوب ہوتا ہے. یہ ہوا ضمیر مطلق مستثنی کو راجے کی, یعنی یوں کہ مستثنی کو راجے کی, کس کو؟ نہ اس میں متصل کی قید ہے نہ منقطع کی قید ہے. تو لہذا تو اشکال ہوا, اعتراض ہوا کہ اے صاحب کافیہ آپ نے یہ ہوا ضمیر مستثنی مطلق کی طرف کیسے راجع کر دی حالانکہ ابھی تک آپ نے مستثنی کی تعریف نہیں کی, اس کی قسمیں بھی بیان کی, اس کی قسموں کی بھی تعریف کر دی, لیکن خود مستثنی مطلق جو تھا اس کی آپ نے تعریف نہیں کی. تو اس کا جواب دیا صاحب جامی نے کہ بھائی مستثنی کا علم دو دفعہ ہو چکا ہے, لہذا اب اس کی تعریف کی کوئی حاجت نہیں, طالب علم کو اس کی اچھی طرح پہچان ہو گئی, تو اب اس کی تعریف کریں گے تو بات ویسے ہی لمبی ہو جائے گی, لہذا اسی لیے صاحب کافیہ نے اس کی تعریف نہیں کی. ایک دفعہ جب شروع میں کہا تھا المستثنی متصل او منقطع, تو وہیں پر جیسے ہی المستثنی کہا پتا چل گیا اس چیز کی بات ہو رہی ہے جس کو علم نحو میں مستثنی کہا جاتا ہے. دیکھو پہچان ہو گئی, کچھ نہ کچھ پہچان ہو گئی یا نہیں. تو پھر اس کے بعد دوسری دفعہ اس کی پہچان اس طرح ہوئی کہ آگے مستثنی متصل اور منقطع دو ہی قسمیں بنائی اور دونوں کی تعریف کر دی, اور دونوں جو ہیں وہ الا اور اس کے اخوات کے بعد واقع ہوتے ہیں. معلوم ہوا مستثنی مطلق وہ ہے جو کس کے بعد واقع ہو, الا اور اس کے اخوات کے بعد واقع ہو, چاہے وہ متصل ہو چاہے منقطع ہو, دونوں اسی طرح کے ہوتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی. تو اس سے دوسری دفعہ طالب علم کو پھر پہچان ہو گئی, پہلے مستثنی کا لفظ شروع میں جو ذکر کیا اس سے بھی پہچان ہو گئی, اور پھر جب اس کی دونوں قسموں کی الگ الگ تعریف کی اس سے بھی مزید پہچان ہو گئی. تو اس لیے پھر باقاعدہ اس کی تعریف نہیں کی کلام کو مختصر کرنے کے لیے. تو سب سے پہلے نصب کو بیان کرنا شروع کیا کہ مستثنی جو ہے وہ وجوباً منصوب ہوتا ہے. وجوباً کی قید کس لیے لگائی؟ کیونکہ آگے ایک قسم آ رہی تھی کہ مستثنی متصل ہو اور کلام غیر موجب ہو اور مستثنی منہ مذکور ہو, تو بدل بھی بنا سکتے ہیں اور نصب بھی پڑھ سکتے ہیں. تو وہاں دیکھو نصب وہاں بھی آتا تھا لیکن واجب نہیں تھا, لیکن یہ جو قسم بیان کر رہے ہیں اس میں نصب کا آنا واجب ہے. یہ وہ صورتیں بیان کر رہے ہیں, وہ والی قسم بعد میں الگ ذکر کریں گے. بات سمجھ میں آ گئی. تو منصوب ہوگا وجوباً اذا کان واقعا بعد الا, جب مستثنی کس کے بعد آئے؟ الا کے بعد آئے, الا کے بعد آئے, اور غیر صفتی صفت نہ ہو. یہاں پر پھر بعض شارحین نے اعتراض کیا کہ صاحب کافیہ کو یہاں غیر صفت قید لگانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. وجہ یہ کہ پیچھے ہوا ضمیر کس کو راجے کی؟ مستثنی کو. معلوم مستثنی کی بات چل رہی ہے, اور یہ الا دو طرح پر آتا ہے, کبھی یہ استثناء کے لیے آتا ہے کبھی صفت کے لیے آتا ہے. وہ الا جو استثناء کے لیے آئے اس کے بعد تو مستثنی آتا ہے, لیکن وہ الا جو صفت کے لیے آئے اس کے بعد جو آتا ہے وہ مستثنی نہیں کہلاتا. توجہ ہے؟ تو جو الا صفت کے لیے ہوتا ہے اس کے بعد تو جو آتا ہے وہ مستثنی ہوتا ہی نہیں ہے. تو جب شروع میں ہی کہہ دیا وہ ہوا منصوب, مستثنی کیا ہوگا؟ منصوب ہوگا. معلوم ہوا اس اللہ کی بات چل رہی ہے جو استثناء کے لیے آتا ہے، کیونکہ اسی کے بعد جو ہے مستثنا آتا ہے، دوسرے اللہ کے بعد تو مستثنا نہیں آتا. تو وہ تو خود ہی نکل گیا تھا جب آپ نے ضمیر مستثنا کو راجع کر دی کہ مستثنا منصوب ہوتا ہے. توجہ ہے، مستثنا منصوب ہوتا ہے. تو پھر یہ غیرہ صفت کی قید آپ نے جو لگائی ہے، زائد لگا دی، یہ قید نہیں لگانی چاہیے تھی. صاحب جامی نے اس کا جواب دیا کہ نہیں بھائی، یہ قید یہ بیکار نہیں ہے، یہ اس لیے ذکر کر دی کہ طالب علم کے کہیں ذہن سے یہ بات نکل نہ جائے. یہاں اگر صرف یہ کہہ دیتے وہ منصوب اذا کان بعد الا فی کلام موجب، تو طالب علم سمجھتا جب بھی الا کے بعد کوئی لفظ آئے گا وہ ہمیشہ کیا ہوگا، منصوب ہوگا کلام موجب کے اندر. تو ساتھ ہی صاحب کافیہ نے کہہ دیا غیر صفتی، کہ یہ یاد رکھنا وہ الا صفت والا نہ ہو، تاکہ طالب علم کے ذہن سے یہ بات نہ نکل جائے اور یہ بات تازہ ہو جائے اس کے ذہن میں. جی اس کے بعد پھر کہا کہ وہ کس میں آئے، فی کلام موجب، کلام مستثنا منصوب ہوگا وجوباً جب وہ الا کے بعد آئے اور کلام موجب میں آئے. جان القوم الا زیدن، یہ کلام موجب ہے، اس میں نفی نہیں یا استفہام نہیں ہے، اور الا کے بعد واقع ہو رہا ہے. تو جان القوم الا زیدن، یہ زیدن وجوباً منصوب ہوگا، اس پر نصب ہی پڑھنا پڑے گا آپ کو. تو یہ کلام موجب کی قید لگا دی، اس کے ذریعے کلام غیر موجب کو نکال دیا، کیونکہ کلام غیر موجب میں الا کے بعد جو آئے اس پر نصب کا پڑھنا واجب نہیں ہے بھائی. پھر یہاں بعض شارحین نے اور اعتراض کیا، انہوں نے کہا کہ صاحب کافیہ کو فی کلام موجب یہاں ایک اور قید تام کا بھی اضافہ کرنا چاہیے تھا، تاکہ قرأت الا یوم کذا جیسی مثالیں اس سے نکل جائیں. دیکھو قرأت الا یوم کذا، قرأت الا یوم کذا یہ کلام موجب ہے، اور بات بھی کس کی چل رہی ہے، کلام موجب کی. اور یہ قرأت الا یوم کذا، یہ یوم کذا منصوب ہے اور کس کے بعد ہے، الا کے بعد ہے. تو اس میں دونوں شرطیں پوری ہیں، یہ الا کے بعد بھی ہے اور کلام بھی موجب ہے، اور یوم کذا منصوب بھی ہے، لیکن یہ نصب مستثنا ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ مفعول فی واقع ہو رہا ہے قرأت کے لیے. تو قرأت الا یوم کذا یہ الا کے بعد بھی ہے، کلام موجب میں بھی ہے، اور یہ بھی صورت کے اندر داخل ہو رہا ہے. حالانکہ اس کو داخل نہیں ہونا چاہیے، اس کو نکلنا چاہیے، کیونکہ یوم قضا کا نصب مستثنا ہونے کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ مفعول فی ہونے کی وجہ سے ہے، یہ ظرف ہے اور بات تو یہاں مستثنا کی چل رہی ہے، لہذا اس مثال کو نکلنا چاہیے. اور اس کے نکالنے کے لیے ضروری ہے کہ تام کی قید لگائیں کہ وہ کلام موجب کس قسم کا ہو، تام ہو. تام ہونے کا معنی یہ ہے کہ مستثنا منہ مذکور ہو، اور یہاں پر مستثنا منہ محذوف ہے. قرأت شہرن یا قرأت کل یوم، وہ کل یوم یا شہرن کو میں نے کیا کر دیا، حذف کر دیا، تو یہ مستثنا منہ مذکور نہیں. اگر وہ مذکور ہوتا تو کلام تام ہوتا، اور الا یوم قضا، یہ یوم قضا کیا بن جاتا، مستثنا بن جاتا. لیکن اب آپ نے وہ شہرن یا کل یومین کو کیا کر دیا، حذف کر دیا. جب اس کو حذف کیا تو مفعول فی اب آگے الا یوم قضا وہ جو ہے وہ مفعول فی بن جائے گا. توجہ ہے، وہ مفعول فی بن جائے گا. تو لہذا اس مثال کو نکلنا چاہیے، ورنہ تو یہ داخل ہو رہی ہے، اور اس کے لیے تام کی قید لگانی چاہیے. صاحب جامی اس کا جواب دیتے ہیں کہ نہیں بھائی، کوئی تام کی قید لگانے کی حاجت نہیں اس مثال کو نکالنے کے لیے. وجہ یہ کہ یہاں پر صاحب کافیہ ان تمام صورتوں کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں جس میں مستثنا منصوب ہو، چاہے اس کا نصب استثنا کی وجہ سے ہو یا کسی اور وجہ سے، لیکن ہونا کیا چاہیے، ہونا اس کو منصوب چاہیے، اور یہ بھی منصوب ہے. توجہ ہے، یہ بھی منصوب ہے، تو جس وجہ سے بھی نصب آئے لیکن ہونا منصوب چاہیے. تو یہ بھی ایسا ہی ہے، اگرچہ مفعول فی ہونے کی وجہ سے نصب ہے لیکن ہے تو نصب، لہذا اس کو داخل ہونا چاہیے. اور کیا دلیل ہے کہ جو بھی ہو لیکن ہونا منصوب چاہیے، کہتے ہیں آپ خود دیکھ لیں، اسی کے اندر آگے چل کے وہ خلا اور عدا کو بھی ذکر کریں گے. حالانکہ خلا اور عدا کے بعد جو منصوب آتا ہے وہ مفعول بھی ہونے کی وجہ سے منصوب ہوتا ہے، مستثنا ہونے کی وجہ سے نہیں، کیونکہ خلا اور عدا فعل ہیں और फेल अपने फाइल को रफा देता है और मफूल बिही को नसब, तो इनके बाद जो मंसूब आता है वो मफूल बिही होने की वजह से मंसूब होता है, मुस्तस्ना होने की वजह से मंसूब नहीं होता। और इसी तरह आगे लैसा और लायकूनू आएंगे, लैसा और लायकूनू के बाद भी मंसूब आएगा लेकिन वो भी मुस्तस्ना होने की वजह से मंसूब नहीं है, बल्कि वो लैसा और लायकूनू की खबर होने की वजह से मंसूब है, क्योंकि लैसा और लायकूनू अफाले नाकिसा में से हैं और अफाले नाकिसा क्या करते हैं, अपने इसम को रफा देते हैं और खबर को नसब देते हैं। तो यहां मुसन्निफ वो सारी सूरतें जिक्र कर रहे हैं जिसमें मुस्तस्ना मंसूब होगा, यानी जिसको माकबल के हुक्म से निकाला जा रहा है, जिस सूरत में भी निकाला जा रहा है। याद रखो ये जितने कलिमात हमने पढ़े, जितने कलिमात पढ़े कि इस्तिस्ना के लिए कौन कौन से कलिमात आते हैं, इल्ला है, खला, अदा, मा खला, मा अदा, लैसा, लायकूनु, गैरुन, सिवा, सवा और हाशा, इनके बाद जो भी आएगा वो मुस्तस्ना कहलाता है क्योंकि उसको माकबल के हुक्म से निकाला जाता है। लेकिन उसका नसब किस वजह से है वो अलग अलग वजह है, बाजों में नसब आएगा ही इस्तिस्ना की वजह से, बाजों में नसब आएगा मफूल बिही होने की वजह से जैसे खला और आदा वगैरह में है, और बाज जगह जो नसब आएगा वो खबर होने की बिना पर आएगा जैसे लैसा और लायकूनू में है, लेकिन है सारे मुस्तस्ना लेकिन नसब की वजह अलग हो सकती है। तवज्जो है, तो साहिब जामी का जवाब चल रहा है, वो फरमाते हैं कि साहिब काफिया यहां उन तमाम सूरतों को जमा करना चाहते हैं जिसमें मुस्तस्ना मंसूब होता है, चाहे उसका नसब इस्तिस्ना की वजह से हो चाहे किसी और वजह से हो। और दलील क्या है कि आगे वो खला और अदा को भी जिक्र करेंगे और लैसा और लायकूनू को भी जिक्र करेंगे, लिहाजा यहां पर भी अगर ये नसब आया है चाहे मफूल फी होने की वजह से है लेकिन है तो ये मुस्तस्ना, है तो ये मुस्तस्ना, माकबल के हुक्म से इसको निकाला गया है लिहाजा इसको दाखिल होना चाहिए। हां बाज और मिसालें हैं उनको निकालने के लिए ताम की कैद होनी चाहिए, इस मिसाल को निकालने के लिए ताम की कैद नहीं होनी चाहिए। दूसरी मिसाल क्या है, कुरी अल्ला यौम कजा, अब इसमें यौम कजा नायबुल फाइल है, मरफू है कुरी अ का फेले मजहूल के लिए, और इस मिसाल को निकलना चाहिए क्योंकि यहां वो शर्तें पूरी हैं जो इन्होंने ऊपर जिक्र की थी, पूरी आ इल्ला यौमु कजा, देखो ये कलाम मुजब है और यौमु कजा इल्ला के बाद वाके हो रहा है, दोनों शर्तें पूरी हैं, इल्ला के बाद भी है कलाम भी मुजब है फिर भी यौमु मरफू है, हालांकि ये क्या कह रहे थे कि वो वजूबन मंसूब होगा, तो इस जैसी मिसालों को निकालना चाहिए और ये तभी निकलेंगी जब आप ताम की कैद लगा दें। क्या कैद लगा दें, ताम की कैद लगा दें, ताम की कैद का क्या माना कि मुस्तस्ना मिन्हू मजकूर होना चाहिए। तो यहां पर भी अगर शाहरुन या कुल्लु यौमिन यहां मजकूर होता तो यूं पढ़ते पूरी अशाहरुन, ये शाहरुन नाइफाइल बनता और इल्ला यौम कजा वो मंसूब ही रहता, वो फिर इसमें दाखिल हो जाता। सूरत समझ में आ गई जी। अब आइए आज के सबक पर, औ मुकद्दमन अत्फुन अला कौलिही बाद इल्ला अल मुस्तस्ना मंसूबुन वुजूबन इदा कानल मुस्तस्ना मुकद्दमन अलल मुस्तस्ना मिन्हु सवा उनका नफी कलामिन मुजबिन औ गैर मुजबिन। भाई वो मकामात जिक्र कर रहे हैं मुसन्निफ जहां मुस्तस्ना मंसूब होगा, तवज्जो है, जहां मुस्तस्ना मंसूब होगा। पहला मकाम गुज़श्ता सबक में उन्होंने जिक्र कर दिया था और क्या कहा था, जरा पीछे आइए मतन पर आइए भाई, कहते हैं वह हुआ मंसूबुन इजाकाना बाद इल्ला फी कलामिन मुजबिन, ये गुज़श्ता सबक का जो मतन था काफिया का भाई, वह हुआ मंसूबुन मुस्तस्ना मंसूब होता है और आगे साहिब जामी ने बताया था वुजूबन कि ये वुजूबन मंसूब होगा, इसलिए क्योंकि बाज़ सूरतों में वो वुजूबन मंसूब नहीं होता बल्कि बदल बनाना भी जायज होता है, तो ये मुस्तस्ना वुजूबन मंसूब होगा इजाकाना बाद इल्ला, इजाकाना वाकियान बाद इल्ला, जब ये किसके बाद आए, इल्ला के बाद आए, गैर सिफति और सिफत ना हो, फी कलाम इन मुजबिन और किस में हो, कलाम मुजब में। देखो वह हुआ मंसूबुन मुस्तस्ना क्या होगा, मंसूब होगा, कब शर्तें जिक्र कर रहे हैं, इजा काना बाद इल्ला, मतन में क्या था इजा काना बाद इल्ला, काना आया और आप जानते हैं काना फेल अज़फ़ाल नाकिसा है, ये एक इसम चाहता है और एक खबर, और इसका इसम मरफू होता है और खबर मंसूब होती है, तो यहां भी याद रखो इजा काना, ये काना के अंदर हुआ जमीर है और मुस्तस्ना को राजे है, जिसको वो हुआ जमीर पीछे राजे की थी कि मुस्तस्ना मंसूब होगा कब, इजा काना, जब वो मुस्तस्ना बाद इल्ला, किसके बाद हो, वो मुस्तस्ना इल्ला के बाद हो, तो काना के अंदर हुआ जमीर है वो मरफू महलन है, वो है काना का इसम, वो मुस्तस्ना को राजे, और आगे बाद इल्ला ये काना की खबर है, तवज्जो है, और बाद इल्ला ये तो जर्फ है, जर्फ है ये, बाद कबलू और बादू तो जुरूफ हैं, ये तो मफूल फी बनते हैं, और मफूल फी के लिए हमेशा क्या चाहिए, आमिल चाहिए भाई, तो यहां पर ये वाकयान साहिब जामी ने इसलिए निकाला, बतलाना ये चाहते हैं कि ये बाद इल्ला जर्फ मुस्तकर है। आपने पढ़ा है कि जार मजरूर इसको जर्फ मजाजी कहते हैं, इसको जर्फ कहते हैं मजाजन, और ये कबलु बादू वगैरह ये जर्फ हैं हकीकतन, क्योंकि इनमें जमाने या जगह वाला माना होता है जहां भी इस्तेमाल करेंगे, और चाहे जर्फ हकीकी हो यानी कबलु बादू वगैरह, या चाहे जार मजरूर हो, सबके लिए आमिल चाहिए। जैसे जैदुन फिद्दारी, तो ये फिद्दार जार मजरूर है, इसको किससे जोड़ेंगे, साबितुन से, जैदुन साबितुन फिद्दार, ये साबितुन आपने क्यों निकाला, क्योंकि जार मजरूर के लिए हमेशा आमिल यानी मुतअल्लक चाहिए, क्या चाहिए, तो ये इसका आमिल है लेकिन इसको मुतअल्लक कहा जाता है, क्योंकि बराह रास्त अमल नहीं कर रहा बल्कि बवास्ता हरफ जर के अमल कर रहा है, जबकि जर्फ हकीकी उस पर तो नसब आता है, वो तो मफूल फी बनता है, तो उसके लिए जो साबितुन या वगैरह निकालें, साबितुन या सबता निकालेंगे, ये उसके लिए मफूल फी बनेगा, वो आमिल और ये मफूल फी, तवज्जो है, जार मजरूर जैदुन फिद्दारी, जैदुन साबितुन फिद्दारी, ये आप कहते हैं जैदुन बाद अमरीन, जैदुन साबितुन बाद अमरीन, तो बाद अमरीन के लिए भी आपने साबितुन निकाला और फिद्दार के लिए भी क्या निकाला, साबितुन, लेकिन फिद्दार के लिए जो साबितुन निकाला कहेंगे ये इसका मुतअल्लक है, जार मजरूर है मुतअल्लक और साबितुन है मुतअल्लक, और जबकि जैदुन साबितुन बाद इल्ला, यहां बाद इल्ला के लिए जो आपने साबितुन निकाला उसको मुतअल्लक नहीं कहेंगे, उसको आमिल कहेंगे, वो अमल कर रहा है बराह रास्त बाद इल्ला को क्या कर रहा है, नसब दे रहा है, बाद पर नसब आया या नसब आया है, और नसब तो खुद ब खुद नहीं आता, उसके लिए तो आमिल चाहिए, तो ये बाद पर जो नसब आया किसने दिया, साबितुन ने, तो चाहे जैदुन फिद्दार कहें या जैदुन बाद आमरीन कहें, दोनों सूरतों में वो जो आमिल है, वो जो मुतअल्लक है, वो महजूफ है, और इसको कहते हैं जर्फ मुस्तकर। जर्फ का अगर आमिल क्या हो, महजूफ हो, तो फिर इसको जर्फ मुस्तकर कहते हैं, और अगर मजकूर हो तो जर्फ लग्व कहते हैं। तो यहां पर भी बाद इल्ला से पहले वाकयान निकालकर बतला दिया कि यह बाद इल्ला काना की खबर है और यह जर्फ मुस्तकर है, और ये वाकयान से मुतालिक होगा, वाकयान कह लें या साबितन कह लें, एक ही बात है। और हमने वहां पर साबितुन मरफू निकाला था, जैदुन साबितुन फिद्दारी, क्यों, क्योंकि वो साबितुन खबर था, जैदुन था मुब्तदा और साबितुन खबर, और खबर मरफू होती है, और यहां साहिब जामी ने काना वाकयान मंसूब निकाला है, वाकयान कह लें या साबितन कह लें, वजह यह कि यह काना की खबर है और काना अपनी खबर को नसब देता है, तो यह साबितन या वाकयान ये मंसूब है। बात समझ में आ गई, तो हासिले के कलाम क्या हुआ कि यह बाद इल्ला काना की खबर है और जर्फ मुस्तकर है और मंसूब है, क्या है, मंसूब है। तो आगे जो है देखो आज के सबक पर, औ मुकद्दमन, इस मुकद्दमन का आतफ उसी बाद इल्ला पर है, और बाद इल्ला तो क्या है, काना की खबर है, मंसूबुल महल है, तो लिहाजा आगे मुकद्दमन का जब इस पर आतफ किया तो मातूफ पर भी वही एराब आता है जो मातूफुन आलय पर होता है, तो ये मुकद्दमन भी क्या है, दरअसल काना की खबर है, इसलिए ये मंसूब है। तकरीर समझ में आ गई, तो कहते हैं औ मुकद्दमन, या पहले जरा मतन देख लो, औ मुकद्दमन अलल मुस्तस्ना मिन्हु, पहली सूरत पीछे कल के सबक में आई थी, क्या सूरत थी कि मुस्तस्ना मंसूब होगा वजूबन, कब, जब किसके बाद आए, जबकि इल्ला के बाद आए और कलाम भी कौन सा हो, मूजब हो, और अब दूसरी सूरत जिकर कर रहे हैं, अब मुकद्दमन अलल मुस्तस्ना मिन्हू, कि मुस्तस्ना वजूबन मंसूब होगा जब वो मुस्तस्ना मिन्हू पर मुकद्दम हो। तवज्जो है जी, अब देखिए भाई इशारा के साथ कहते हैं औ मुकद्दमन अतफुन अला कौलिही बाद इल्ला, ये मातिन के कौल बाद इल्ला पर आतफ है, आयिल मुस्त, अब पूरी इबारत निकाल रहे हैं, पीछे इबारत क्या आई थी मतन में, वह हुआ मनसूबुन, मुस्तस्ना क्या होता है, منصوب ہوتا ہے اور آگے شارح جامی نے بتلایا تھا وجوباً بھئی تو مستثنا وجوباً منصوب ہوتا ہے اذا کان بعد الا جب وہ کس کے بعد ہو الا کے بعد ہو اور کس میں ہو کلام موجب میں اب دوسری صورت بتلا رہے ہیں دیکھو پوری عبارت نکالیں گے ایل مستثنا منصوب وجوباً مستثنا وجوباً منصوب ہوگا اذا کان المستثنا مقدماً علی المستثنا منہ جبکہ مستثنا مقدم ہو مستثنا منہ پر سوا ان کان فی کلام موجب او غیر موجب بھئی پہلی صورت میں کیا آیا تھا اذا کان بعد الا غیر الصفت فی کلام موجب کی قید آئی تھی اور یہاں کوئی قید نہیں آئی کہ کلام موجب ہو یا غیر موجب معلوم ہو دونوں صورتوں میں چاہے کلام موجب ہو چاہے غیر موجب ہو جب مستثنا مقدم ہو جائے مستثنا منہ پر تو پھر وہ منصوب ہوگا تو کہتے ہیں سوا ان کا نفی کلام موجب او غیر موجب برابر ہے کہ وہ مستثنا کلام موجب میں ہو یا غیر موجب میں ہو نحو مثال کے طور پر جاءنی الا زیدن القوم زیدن القوم ملا کر کیسے پڑھیں گے الا زیدن القوم توجہ ہے ذرا یوں کریں یہ القوم مؤخر ہے اس کو ذرا الا سے پہلے لے آئیں جا ان القوم الا زیدن جا ان القوم الا زیدن آئے میرے پاس وہ لوگ الا زیدن سوائے زید کے دیکھو یہ پہلی صورت بن گئی یہ زیدن کس کے بعد آ رہا ہے مستثنا کس کے بعد ہے الا کے بعد ہے اور کس میں ہے کلام موجب میں ہے کیونکہ جا ان القوم ہے یہاں پر نہ حرف نفی ہے نہ یہ نہیں ہے اور نہ استفام تو یہ کلام موجب بھی ہے اور الا کے بعد بھی مستثنا آ رہا ہے تو ابھی پہلی صورت میں بتلایا تھا کہ وہ وجوباً منصوب ہوگا اب اسی القوم کو یہاں سے اٹھا کر بالکل آخر میں لے گئے جب القوم جو کہ مستثنا منہ تھا وہ آخر میں آیا تو مستثنا زیدن اس پر مقدم ہو گیا جیسے اس وقت ہے جاءنی الا زیدن القوم تو یہ زید مستثنا منہ پر مقدم ہو گیا مستثنا مقدم ہو گیا مستثنا منہ پر اور ابھی بتایا اس صورت میں بھی وجوباً منصوب ہوگا اس لیے جاءنی الا زیدن القوم یہاں بھی آپ زیدن پر نصب ہی پڑھیں گے یہ واجب ہے یہ تو مثال تھی کلام موجب کی جس میں مستثنا مقدم ہے مستثنا منہ پر دوسری مثال اگلی مثال پر آئیے وما جاءنی الا زیدن احدن یہاں ذرا احدن کو الا سے ذرا پہلے لے آئیں ما جاءنی احدن میرے پاس کوئی ایک بھی نہیں آیا الا زیدن سوائے زید کے اب یاد رکھو یہ احدن مستثنا منہ ہے الا سے پہلے اور زیدن کیا ہے مستثنا ہے توجہ ہے اور کلام کون سا کلام ہے ما جاءنی کلام غیر موجب ہے کلام غیر موجب ہے اور جب احدن الا سے پہلے ہو تو کلام ہے غیر موجب اور مستثنا منہ مذکور ہے ما جاءنی احدن الا زیدن تو مستثنا منہ بھی مذکور ہے اور اس صورت میں آپ نے پڑھا تھا دو چیزیں جائز ہیں نصب بھی جائز اور بدل بھی جائز یہاں الا زیدن بھی آپ پڑھ سکتے ہیں ما جاءنی احدن الا زیدن اور آپ زید کو بدل بھی بنا سکتے ہیں احدن سے اور احدن پر تو رفع ہے ما جاءنی احدن اور بدل اور مبدل منہ کا اعراب ایک ہوتا ہے تو زیدن بھی پڑھ سکتے ہیں تو آپ یوں بھی پڑھ سکتے ہیں ما جاءنی احدن الا زیدن نصب پڑھیں اور یوں بھی پڑھ سکتے ہیں ما جاءنی احدن الا زیدن بھی پڑھ سکتے ہیں اور مختار کیا ہے پسندیدہ کیا ہے بدل بنانا تو زیدن پڑھنا یہاں پسندیدہ لیکن پھر اسی احدن کو جو الا سے پہلے تھا اس کو اٹھا کر بالکل آخر میں لے گئے اور اب اس وقت یہ مثال جو کتاب میں ہے کیا بن گئی ما جاءنی الا زیدن احدن اب مستثنا منہ جب سب سے آخر میں آیا تو مستثنا اس پر مقدم ہو گیا اب اگرچہ یہ کلام غیر موجب ہے غیر موجب ہے ما جاءنی نفی موجود ہے لیکن مستثنا مقدم ہے مستثنا منہ پر اور ابھی انہوں نے آپ کو بتایا کہ مستثنا جب بھی مقدم ہوگا مستثنا منہ پر وہ وجوباً منصوب ہوگا چاہے کلام موجب ہو چاہے کلام غیر موجب تو جب احدن الا سے پہلے تھا تو زیدن پڑھنا بھی جائز تھا اور زیدن پڑھنا بھی جائز لیکن یہی احدن اب آخر میں چلا گیا تو آپ نصب ہی پڑھیں گے आप बदल नहीं बना सकते। भाई क्यों बदल क्यों नहीं बना सकते? कहते हैं इसलिए क्योंकि बदल हमेशा मुबदल मिनहू के बाद आता है, और यहां तो जैदन अहदुन पर मुकदम हो गया है, तो आप इसको बदल कैसे बना सकते हैं? बदल तो बाद में आता है, मुबदल मिनहू पर मुकदम नहीं होता, तो यहां इसको बदल बनाना मुमकिन ही नहीं है। बात समझ में आ गई। यही बयान कर रहे हैं कि इस वक्त वाजिब होगा नसब लिम्तिनाई तकदीमिल बदल अलल मुबदल मिनहू, इसलिए क्योंकि बदल का मुकदम करना मुबदल मिनहू पर यह मुमतनिअ है, ये मुमतनिअ है, बदल मुबदल मिनहू पर मुकदम नहीं हो सकता, क्योंकि बदल तवाबिअ में से है। आप जानते हैं तवाबिअ, आगे बयान भी आएगा, पांच चीजें हैं तवाबिअ भाई, और इन पर वही एराब आता है जो इनके माकबल पर हो। जैसे सिफत पर वही एराब आता है जो माकबल में मौसूफ पर होता है, जैसे बदल पर वही एराब आता है जो माकबल में मुबदल मिनहू पर होता है, ताकीद पर वही एराब आता है जो मुअक्कद पर हो माकबल के अंदर भाई, इसी तरह मातूफुन अलैह पर जो एराब आता है वही एराब आगे मातूफ पर भी आएगा, तो मातूफ भी ताबिया होता है मातूफुन अलैह के। इसी तरह अथवे बयान जो है वो भी तवाबिया में से है, उस पर भी वही एराब आता है जो माकबल में मातूफुन अलैह पर हो। तो यहां पर अब दूसरा एराब बदल का था, अब जब ये मुकदम हो गया अब ये बदल नहीं बन सकता, तो लिहाजा बदल बनाना मुमतनिअ हो गया, अब नसब वाजिब हुआ। तो कहते हैं लिम्तिनाई तकदीमिल बदल अलल मुबदल मिनहू, इस वजह से कि मुमतनिअ है मुकदम करना बदल को मुबदल मिनहू पर, औ मुनक़तिअन, ये तीसरी जगह आ गई भाई जहां पर मुस्तस्ना पर नसब पड़ेंगे। भाई पहले मतन देख लो, अव मुनकतेअन फिल अक्सरी, या मुस्तस्ना जो है वो मुनकते हो तो उस पर नसब पड़ेंगे, फिल अक्सरी अक्सरे लुगात में, अक्सरे लुगात में आपको बतलाएंगे, तो मालूम हुआ मुस्तस्ना जब मुनकते हो तो उस पर नसब पड़ा जाएगा अक्सर अरब की लुगात के मुताबिक। बास के नजदीक नसब जरूरी नहीं है, लेकिन अक्सर के नजदीक नसब ही जरूरी है, नसब ही पढ़ा जाएगा। देखिए भाई अब इसको शरा के साथ, अमुनकतेअन अयल मुस्तस्ना मनसूबुन ऐजन वजूबन, यानी मुस्तस्ना जो है वो मनसूब होगा वजूबन, ऐजन का तर्जमा यहां कर लें नीज भाई नीज, अयल मुस्तस्ना मनसूबुन ऐजन वजूबन, ओके नीज मुस्तस्ना मिनहू मनसूब होगा वजूबन भाई, इजा काना मुनकतेअन जब वो मुस्तस्ना मुनकते हो, बाद इल्ला और किसके बाद आए, इल्ला के बाद आए। याद रखना एक और फायदा यहां पर, मुस्तस्ना मुनकते जो है ना, मुस्तस्ना मुनकते वो सिर्फ तीन लफ्जों के बाद आता है, उलमा फरमाते हैं एक इल्ला के बाद कभी आ जाता है, एक कभी गैरून के बाद आ जाता है, और कभी बैदा के बाद आता है, किसके बाद, बैदा बा या दाल बैदा, तो इनके बाद मुस्तस्ना मुनकतिअ आता है, बाकी ये जो लफ्ज हैं इस्तिस्ना वाले इनमें से किसी के बाद मुस्तस्ना मुनकतिअ नहीं आता भाई, तवज्जो है, तो किस किस के बाद आएगा मुस्तस्ना, इल्ला के बाद आएगा और गैरुन के बाद आएगा और बैदा के बाद आएगा बैदा, और बैदा नीज हमेशा याद रखो वो अन्ना पर दाखिल होता है, बैदा के बाद क्या आएगा, अन्ना, और अन्ना क्या चाहता है, एक इसम और एक खबर, तो वो आगे उसके इसम और खबर तो आएंगे लेकिन बैदा खुद इस अन्ना पर दाखिल होगा। मसलन आप किसी को बतलाते हैं जैदुन कसीरुल माली, जैद बड़े कसीर माल वाला है, बड़ा मालदार आदमी है, बैदा अन्नहू बखीलुन, बैदा अन्नहू बखीलुन, इलावा इसके कि वो बड़ा बखील है, तो ये देखो ये जो बैदा आया इसके बाद अन्ना आया, बैदा अन्नहू बखीलुन, और शायद बैदा को इसलिए जिक्र नहीं किया यहां पर कि यहां पर एराब की बात चल रही है किसकी, और बैदा के बाद तो अन्ना आता है यानी वहां एराब जाहिर नहीं होता, वहां वो महल्लन वो एराब आएगा। तो कहते हैं अल मुस्तस्ना मनसूबन ऐजन वजूबन, के मुस्तस्ना मिनहू नीस वजूबन मनसूब होता है, इजा कान मुनकतेअन बाद इल्ला जब वो मुनकते हो इल्ला के बाद, नहु मिसाल के तौर पर माफिदारी अहदुन इल्ला हिमारन, माफिदारी अहदुन कोई नहीं है, फिदारी उस घर में, माफी दारी नहीं है उस घर में आहदुन कोई एक भी इल्ला हिमारन सिवाय गदे के। अब देखो ये हिमार क्या है, ये मुस्तस्ना मुनकतिया है। मां कबल में कहा कोई एक भी नहीं है, मालूम है इंसानों की नफी की जा रही है और आगे जिक्र किसका आया, हिमार का, तो ये मां कबल के अंदर दाखिल नहीं, तो ये गैर मुखरज हुआ है। इल्ला और उसके अखवात के बाद वाक है लेकिन माकबल से मुखरज नहीं है, तो ये मुस्तस्ना मुनकतिया है भाई। आगे देखिए फिल अक्सरी, फिल अक्सरी भाई देखो मुस्तस्ना मुनकतिया हो फिल अक्सरी, मतन में सिर्फ फिल अक्सर आया तो इस अल अक्सर से क्या मुराद है, तो साहिबे जामी आपको बतलाएंगे कि अक्सर से मुराद है अक्सर लुगात, अरब के अक्सर कबीलों की लुगात जो है वो मुराद है, अक्सर कबीलों की लुगात मुराद है उनकी जुबान भाई। भाई अरब में मुख्तलिफ कबीले आबाद थे भाई, और आप जानते हैं कि थोड़ा बहुत जुबान में फर्क होता है, एक करीब के भी दो शहरों में आप चले जाएं जिनमें थोड़ा फासला हो तो एक शहर वालों की जुबान दूसरे शहर वालों की जुबान से थोड़ा बहुत मामूली फर्क होता है, और फिर जो जो फासला बढ़ता जाता है यह फर्क भी बढ़ता चला जाता है भाई। तो अरब के जो कबीले थे उनमें से अक्सर की लुगात में मुस्तस्ना मुनकतिया मंसूब होता है वजूबन। हां बनु तमीम वाले जो हैं उनके उनमें थोड़ा सा फर्क है, उसको वो आगे शारह जामी जिक्र करेंगे। तो अल अक्सर से क्या मुराद है, अक्सर लुगात, अक्सर जुबानें जो हैं अरब के कबीलों की, तवज्जो है। तो देखो अल अक्सर आया, मतन में तो आया फिल अक्सर यानी अल अक्सर आया, और मुराद क्या है, अक्सर लुगात हैं। तो इसमें फिर बाज शारह में ये बात पहले भी हो चुकी है कि बाज कहते हैं कि ये अलिफ लाम इवज है मुजाफुन इले का, असल में क्या था अक्सर लुगाती, क्या था फी अक्सर लुगाती, फिर अल लुगात मुजाफुन इले को हजफ किया गया और अक्सर पर क्या ले आए अलिफ लाम ले आए, तो क्या बन गया फिल अक्सरी, तो ये अलिफ लाम इवज है मुजाफुन इले का। जबकि नहवियों का दूसरा ग्रोह वो भी यही कहता है अल अक्सर से क्या मुराद है, मसलन अक्सर लुगात मुराद है, लेकिन वो ये नहीं कहते कि ये अलिफ लाम मुजाफुन इले का इवज है, वो कहते हैं अलिफ लाम मुजाफ इले का इवज नहीं हो सकता, फिर कैसे इसे अक्सर लुगात मुराद है, वो कहते हैं अलिफ लाम के जरिए किसी चीज की तरफ इशारा किया जाता है। तो अल अक्सर से हर अक्सर नहीं मुराद बल्कि कौन सा अक्सर मुराद है, अक्सर लुगात मुराद है। बात समझ में आ गई, तो माल दोनों का दोनों के कलाम का हासिल एक ही है कि अल अक्सर से क्या मुराद है, अक्सर लुगात मुराद है। पहले ग्रोह वाले भी यही कहते हैं, दूसरे ग्रोह वाले भी यही कहते हैं, अलबत्ता सिर्फ किस तरह मुराद है उसमें फर्क है। एक ग्रोह वाले कहते हैं कि अलिफ लाम इवज है मुजाफोन इले का, और दूसरे कहते हैं कि अलिफ लाम मुजाफ इले का इवज नहीं होता बल्कि अलिफ लाम के जरिए इशारा किया जाता है। तो अल अक्सर के जरिए इशारा है किसकी तरफ, अक्सर लुगात की तरफ। तो कहते हैं फिल अक्सरी ऐ फी अक्सर लुगात, अक्सर लुगात के अंदर वही लुगात अहले हिजाजी, और ये अहले हिजाज वालों की लुगात हैं यानी उनकी जुबानें हैं। लुगत का क्या माना, जुबान, ये उनकी जुबानें हैं। याद रखो हिजाज अरब का एक बड़ा इलाका है, वो हिजाज कहलाता है, मक्का और मदीना भी इसी के अंदर आते हैं, हालांकि मक्का और मदीना के अंदर कोई 450 किलोमीटर का फासला है लेकिन दोनों इसी हिजाज इलाके के अंदर आते हैं। तो ये अहले हिजाज जो इस इलाके के लोग थे ये सारे जो हैं इनकी जुबान में इसी तरह है कि ये मुस्तस्ना मुनकते पर नसब पढ़ते हैं भाई। तो कहते हैं वही लुगात अहले हिजाजी, और ये अहले हिजाज वालों की जुबानें हैं। फइन्नहुम कबाइलु कसीरून, इसलिए क्योंकि वो बहुत से कबीले हैं। ये सारा इलाका भाई इतना बड़ा इलाका है तो इसमें बहुत से कबीले थे भाई, कुरैश भी इसी के अंदर था और कबीले भी इसी में थे, उनमें से अक्सर की लुगत यही है कि वो मुस्तस्ना मुनकते पर वजूबन नसब पढ़ते हैं। और फी अक्सर मजाहिब नुहात, ये दूसरा इहतमाल जिक्र कर रहे हैं साहिब जामी कि पहला इहतमाल क्या, फिल अक्सर से क्या मुराद, फी अक्सर लुगात, और दूसरा इहतमाल क्या है, फी अक्सर मजाहिब नुहात, नहवियों के अक्सर मजाहिब जो हैं उनके मुताबिक मुस्तस्ना मुनकते मंसूब होगा वजूबन। और कहते हैं बात एक ही है, चाहे अक्सर लुगात कह लें क्योंकि इससे अहले हिजाज की लुगात मुराद है, और या आप यूं कह लें फी अक्सर मजाहिब नुहात, भाई नहवियों के अक्सर मजाहिब जो हैं उसमें मुस्तस्ना मुनकते मंसूब होगा। वजह यह कि नहवी हजरात भी ज्यादातर अहले हिजाज की लुगात की तरफ ही गए हैं, तो बात एक ही है, बात समझ में आ गई। कहते हैं औफी अक्सरी मजाहिब इन नुहाती या नहवियों के अक्सर मजाहिब में फइन अक्सरहुम ज़हबू इला लुगतिल हिजाज़ियती, इसलिए क्योंकि अक्सर नहवी जो हैं वो गए हैं लुगत हिजाजी की तरफ, हिजाज वालों की लुगत और उनकी जुबान की तरफ वो गए हैं, उसी को इन्होंने इख्तियार पसंदीदा करार दिया है। फल मुनकतेउ मुतलकन मनसूबुन इंदहुम, तो मुस्तस्ना मुनकते जो है वो मुतलकन मनसूब होता है इनके नजदीक। ये जो अक्सर हैं, अक्सर लुगात हैं या अक्सर नहवी हजरात का मजहब है, इनके मुताबिक मुस्तस्ना मुनकतेउ मुतलकन यानी जिस किस्म का भी हो, जिस किस्म का भी हो उसमें कोई कैद नहीं, मुस्तस्ना मुनकतेउ मुतलकन इनके नजदीक मनसूब होगा। तो कहते हैं फल मुनकतेउ मुतलकन मनसूबुन इंदहुम, पस मुनकतेउ जो है वो मुतलकन मनसूब है इनके नजदीक। इज़ला युतसव्वरु फीही इल्ला बदलुल गलती, इसलिए क्योंकि इसके अंदर तसव्वुर नहीं किया जा सकता मगर बदलुल गलत का, मगर किसका? बदलुल गलत का। भाई देखिए यहां बदल के बारे में समझ लें, आगे बदल का जिक्र भी आएगा और साहिब किताब आपको बतलाएंगे कि बदल की चार किस्में हैं। कितनी किस्में हैं? चार। एक है बदलुल कुल, एक है बदलुल बाज, एक है बदलुल इश्तेमाल और एक है बदलुल गलत। तवज्जो है, एक क्या है? बदलुल कुल, एक है बदलुल बाज, एक है बदलुल इश्तेमाल और एक है बदलुल गलत। बदलुल कुल किसे कहते हैं? इधर देखिए, मसलन मैं आपसे कहता हूं जा अनी जैदुन अखू का, जा अनी जैदुन अखू का, आपका भाई है मसलन उसका नाम जैद है, वो मेरे पास आया था, जा अनी जैदुन अखू का, तरकीब कैसे होगी? जा आ फेल नून विकाया या जमीर मंसूब महल्लन मफूल बिही जैदुन मरफू लफजन मुबदल मीन हो, आगे ये आखू का मुजाह मुजाफिले मिलकर बदल बनेंगे। तवज्जो है, तो जैदुन मरफू लफजन मुबदल मीन हो, आखू मरफू लफजन मुजाफ, क्योंकि आगे काफ जमीर आ रही है और जिस इसम के साथ भी जमीर मुत्तसिल आ जाए वो आपस में क्या बनते हैं? मुजाह मुजाफिले। तो आखू मरफू लफजन मुजाफ। अब बताइए मरफू क्यों? क्योंकि ये बदल बन रहा है, शाबाश, माकबल में मुबदल मिनहू है और इसने क्या बनना है? बदल, और मुबदल मिनहू और बदल का इराब एक होता है, माकबल जैदुन वो भी मरफू, तो अखू ये भी क्या होगा? मरफू। और अखू किस में से है? अस्माए सित्ता मुकब्बरा मुआहदा मुजाफा इला गैरिया इल मुतकलिम, और इस वक्त ये भी मुजाफ हो रहा है काफ जमीर की तरफ यानी गैर या मुतकलिम की तरफ, और इसका रफा किसके साथ आता है? वाओ के साथ, इसीलिए अखू का है जी। तो ये अखू मरफू लफजान मुजाफ, और मुजाफ आपको कैसे पता चला ये मुजाफ है और आगे मुजाफिले आ रहा है? तो आप क्या कहेंगे कि इसके साथ जमीर मुत्तसिल है, आगे काफ जमीर है, उसका इराब बताइए, मजरूर महल्लान मुजाफुनील है। अखू का, भाई मैं तो इस पर नसब पढ़ रहा हूं, आप इसको मजरूर कैसे कह रहे हैं? शाबाश, ये इसका एराब नहीं है, ये इसकी हरकत है, क्योंकि ये तो जमीर है, जमीर तो मबनियात में से है, उस पर तो एराब जाहिर ही नहीं होता। तो फिर अखू का, अखू मुजाफ अपने मुजाफिले से मिलकर ये बदल हुआ जैदुन के लिए, और मुबदल मिनहू अपने बदल से मिलकर ये फाइल हुआ जाअनी के लिए, और फेल अपने फाइल और मफूल बिही से मिलकर जुमला फ़िअलिया खबरिया हुआ, जाअनी जैदुन, मेरे पास जैद यानी आपका भाई आया था। देखो इसको कहते हैं बदलुल कुल। क्या कहते हैं? बदलुल कुल कहते हैं। याद रखो बदलुल कुल इसे कहते हैं कि बदल और मुबदल मिनहू दोनों का मदलूल एक ही चीज हो, दोनों का मदलूल एक ही हो। भाई जैद से जो जात मुराद है, आपका भाई भी वही है, जैद आपका भाई है मसलन उसका नाम जैद है, वो मेरे पास आया था, तो मैं जैद कहूं तो भी वही जात मुराद, मैं अखू का कहूं आपका भाई तो इससे भी वही जात मुराद है। देखो दोनों का मदलूल बिल्कुल एक है। तवज्जो है, तो बदलुल कुल किसे कहते हैं? कि बदल और मुबदल मिनहू दोनों का मदलूल एक हो, अगर एक नहीं होगा तो मालूम हुआ यह बदलुल कुल नहीं है भाई। दूसरी किस्म है बदलुल बाज इसे कहते हैं जिसमें बदल जो बाद में आ रहा है, बदल जो बाद में आता है वो मुबदल मिनहू का जुज होता है, उसका बाज होता है। जैसे मैं कहता हूं जरबतु जैदन रअसहू, जरबतु जैदन मैंने जैद को मारा, रअसहू यानी उसके सर को, तो देखो ये जैदन ये मुबदल मिनहू है और रअसहू ये बदल है भाई, और हा जमीर जैद को राजे है, जैद का सर। और मुझे बताइए जैद का सर वो जैद का कुल है या उसका बाज है? उसका बाज है, उसका जुज है भाई। तो इसको क्या कहेंगे? बदलुल बाज कहेंगे। बदलुल कुल किसे कहते हैं? फिर दोहराएं कि मुबदल मिनहू और बदल दोनों का मदलूल एक हो, बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए। और बदलुल बाज वो है कि उसका मदलूल मुबदल मिनहू के मदलूल का जुज हो भाई। जरबतु जैदन रअसहू, जैदन मंसूब है और रअसहू ये भी मंसूब है क्योंकि ये बदल है भाई, और बदल पर वही अराब आता है जो मुबदल मिनहू पर हो। तीसरा है बदलुल इश्तेमाल। बदलुल इश्तेमाल इसे कहते हैं कि मुबदल मिनहू और बदल में ताल्लुक होता है, मुबदल मिनहू और बदल में ताल्लुक होता है, न वो उसका कुल होता है न जुज होता है, अलबत्ता उसके साथ उसका ताल्लुक होता है। जैसे सुलिबा जैदुन सौबुहू, सुलिबा सल्ब का माना है छीनना, सुलिबा जैदुन जैद को छीना गया, सौबुहू यानी उसके कपड़े को, जैद को छीना गया यानी उसके कपड़े को। अब देखो जैदुन ये मुबदल मिनहू है और सौबुहू आई सौबु जैदिन ये हाजमीर जैद को राजे है, ये क्या है? बदल है। और देखो ये कपड़े का जैद से ताल्लुक है क्योंकि ये किसका कपड़ा है? सौबुहू उसका यानी जैद का कपड़ा है। तो बदलुल कुल किसे कहते हैं? कि दोनों का मदलूल एक हो, बदल और मुबदल मिनहू का। बदलुल बाज किसे कहते हैं? कि इस बदल का मदलूल वो मुबदल मिनहू के मदलूल का जुज हो। और बदलुल इस्तेमाल किसे कहते हैं? कि बदल का ताल्लुक हो किसके साथ? मुबदल मिनहू के साथ, ना वो उसका कुल हो और ना जुज हो। तवज्जो है, लेकिन फिर भी बात वाजे नहीं होती। सुलिबा जैदुन सौबुहू, छीना गया जैद को यानी उसके कपड़ों को, उसके कपड़ों को, बात फिर भी वाजे नहीं। तो बाज और उलमा ने बड़ी प्यारी तारीफ की बदलुल इस्तेमाल की। वो कहते हैं बदलुल इस्तेमाल वो है कि मुबदल मिनहू फेल का महल नहीं होता, वो फेल को कबूल नहीं करता। मैंने कहा सुलिबा जैदुन, जैद को छीना गया, तो आप सोच में पड़ गए जैद को छीना गया क्या माना? जैद की चीजों को छीना जा सकता है, जैद को छीनने का क्या मतलब है? तवज्जो है। तो जो मुबदल मिनहू होता है वो फेल को कबूल नहीं करता, वो फेल का महल नहीं बनता, जहन अभी भी मुंतजिर होता है कि आगे कोई और लफ्ज आना चाहिए जो फेल को कबूल कर ले। तो जब मैंने कहा सुलिबा जैदुन, तो आप परेशान थे कि जैद को छीना गया, भाई जैद उसको तो नहीं छीना जा सकता भाई, तो ये फेल का महल नहीं, ये फेल को कबूल नहीं कर रहा, जहन अभी भी मुंतजिर है, आगे कोई और लफ्ज आना चाहिए जो फेल को क्या कर ले? कबूल कर ले। और आगे फिर सौबुहू आया, जैद को छीना गया यानी उसके कपड़ों को छीना गया। अब बात ठीक बन गई, जैद को तो नहीं छीना जा सकता लेकिन उसके कपड़ों को छीना जा सकता है। तो बदलुल इस्तेमाल किसे कहते हैं? पहली तारीफ क्या थी? कि बदल और मुबदल मिनहू में ताल्लुक होता है। और दूसरी तारीफ क्या की? कि मुबदल मिनहू वो फेल को कबूल नहीं करता, वो फेल का महल नहीं बनता, वो जहन अब मुंतजिर रहता है कि आगे बदल आए और वो आगे कोई और लफ्ज आए और वो उस फेल को कबूल करे। तो सुलिबा जैदुन सौबुहू, छीना गया जैद को यानी उसके कपड़ों को, ये सौबुहू क्या है? बदलुल इस्तेमाल है। चौथी किस्म बदल की, वो बदलुल गलत है भाई। बदलुल गलत जो है उसको बदलुल गलत इसलिए कहते हैं क्योंकि गलती उसका सबब बनती है। मसलन मैं आपको बताना चाहता था मेरे पास अमर आया है, तो बताते बताते मेरी जुबान पर बेख्याली में जैद आ गया, मैंने कहा जा अनी जैदुन, और मैं बताना किसके बारे में चाहता था? अमर के बारे में। तो मैं अगले ही लम्हे उसकी इसलाह भी कर लेता हूं, अमर ले आता हूं, जा अनी जैदुन अमरुन, जा अनी जैदुन अमरुन। यह जैद मैं क्यों लाया? गलती की वजह से। किसकी वजह से? बेख्याली की, मैं गलती हो गई मुझसे, तो लेकिन साथ ही मैंने इसलाह भी कर दी, जा अनी जैदौन आमरुन, तो ये बदल, ये जो आमर को लेकर आया मैं, ये बदलुल गलत है। ये इसको बदलुल गलत क्यों कहते हैं? क्योंकि माकबल की गलती इसके लाने का सबब बनी, गलती से जो मैंने जैद कह दिया था वो इसके लाने का सबब बनी। बात समझ में आ गई। जा अनी जैदौन आमरुन। अब मुझे बताइए, एक मिसाल मैं आपके सामने जिक्र करूंगा कि ये कौन सा बदल है। जाअनी जैदुन अखूहू, मेरे पास जैद आया यानी जैद का भाई। जाअनी जैदुन अखूहू, ये अखूहू कौन सा बदल है? हां, बजाहिर तलबा फौरन कहते हैं बदलुल कुल है, हालांकि मैंने तारीफ बतलाई आपको। बदलुल कुल किसे कहते हैं? दोनों का मदलूल एक हो। जैद जिस पे दलालत कर रहा है, क्या जैद का भाई वो भी उसी पे दलालत कर रहा है? जैद अलग है, जैद का भाई अलग है, तवज्जो है। जैद जात और है, अखूहु, और जैद का भाई और है। तो देखो दोनों का मदलूल एक नहीं है, बस आपने इतना याद रखना है, बदलुल कुल में दोनों का मदलूल एक होगा, तवज्जो है। तो फिर जानी जैदुन अखूहु, फिर ये कौन सा बदल है? जी जैदुन अखूहु, क्या जैद का भाई जैद का जुज है? नहीं, ये बदलुल बाज भी नहीं। बदलुल इस्तेमाल, बदलुल इस्तेमाल जिसमें तो मुबदल मिनहू फेल को कबूल ही नहीं करता। जानी जैदुन, ये जैद तो फेल को कबूल कर रहा है भाई, जैद आ सकता है या नहीं आ सकता? ये तो फेल को कबूल कर रहा है। तो याद रखो ये बदलुल गलत की मिसाल है। मैं कहना क्या चाहता था कि जैद का भाई आया है, लेकिन गलती से जुबान पर क्या आ गया? जैद। मैंने फौरन इसलाह कर दी, जानी जैदुन अखूहू। तो ये क्या है? बदलुल गलत है। बात समझ में आ गई। तो कहते हैं फल मुनकतिउ मुतलकन मनसूबुन इंदहुम। मुनकतिउ जो है मुस्तस्ना मुनकते, वो मुतलकन मनसूब होता है अक्सर नहवियों के नजदीक। इस ला युतसव्वुर फीही इल्ला बदलुल गलती, इसलिए क्योंकि इसमें तसव्वुर नहीं हो सकता मगर बदलुल गलत का ही। मगर किसका? बदलुल गलत का। मसलन इधर देखिए, मैं एक जुमला आपके सामने कहता हूं, मा जा अनिल कौमो, मा जा अनिल कौमो, मेरे पास वो लोग नहीं आए। मैंने बताया था कि अल कौम मर्दों की जमात को कहते हैं, तीन से लेकर नौ तक, इसमें औरतें दाखिल नहीं। हां, कभी कभार तबान औरतें भी दाखिल हो जाती हैं, लेकिन असल में ये मर्दों की जमात को कहते हैं। तो मैं एक खास जमात की तरह मैंने इशारा किया, मा जा अनिल कौमो, मेरे पास वो लोग नहीं आए। इल्ला हिमार मैं कहता हूं, क्या कहता हूं? इल्ला हिमार। अब मुझे बताइए इल्ला हिमार कौन सा मुस्तस्ना है? मुनकतिअ है, और उसमें क्या पढ़ेंगे? नसब पढ़ेंगे। अभी बताया नसब पढ़ना वाजिब, तो मा जा अनिल कौमु इल्ला हिमारन, तो यहां नसब ही पढ़ेंगे। अगर आप बदल बनाना चाहते हैं, बदल बनाना चाहते हैं, तो हिमार को बदल बनाएंगे किस से? अल कौम से। मा जा अनिल कौम इल्ला हिमार, हिमार को बदल बनाना चाहते हैं ना, फर्ज करें। हमने तो कहा नसब ही वाजिब है, लेकिन अगर आप यह कहें कि इसमें दूसरा एराब भी हो सकता है, तो फिर दूसरी किस्म यह है कि बदल बनाओ, और यहां मा कबल में है अल कौम और मा बाद में क्या है? हिमार। तो क्या यह बदलुल कुल बन सकता है? क्या अल कौम और अल हिमार का मदलूल एक है? नहीं, ये उनका मदलूल एक नहीं, बदलुल कुल भी नहीं हो सकता। और क्या हिमार अल कौम का जुज है? नहीं, ये बदलुल बाज भी नहीं हो सकता। और क्या ये अल कौमु ये फेल को कबूल नहीं कर रहा? मा जा अनिल कौमु, ये तो फेल को कबूल कर रहा है, तवज्जो है। इसके बाद जहन आगे किसी और चीज का मुंतजिर नहीं रहता। अगर आप किसी को सिर्फ इतना कहें मा जा अनिल कौमु, वो लोग मेरे पास नहीं आए थे, देखो बात बिल्कुल वाजे है, तवज्जो है, तो मालूम है ये बदलुल इस्तेमाल भी नहीं हो सकता। तो आखिरी सूरत ये रह गई कि ये फिर ये बदलुल गलत हो सकता है। क्या हो सकता है? बदलुल गलत हो सकता है। तो बात ये चल रही है, फिर सुनो कि मुस्तस्ना मुनकते अक्सर के नजदीक मंसूब ही होगा वजूबन। इसको बदल नहीं बना सकते, क्योंकि अगर बदल बनाओगे तो बदल बनाने की तो एक ही सूरत है, इसको कौन सा बदल बनाना पड़ेगा? बदलुल गलत बनाना पड़ेगा, तवज्जो है, बदलुल गलत बनाना पड़ेगा। और बदलुल गलत याद रखो, फसीह कलाम में बदलुल गलत की गुंजाइश नहीं है, फसीह कलाम तो उसको कहते हैं जिसमें गलतियां और खराबियां ना हो भाई, और यहां तो गलती की वजह से आपको आगे बदल लाना पड़ा, तो फसीह कलाम में इसकी गुंजाइश नहीं। मसलन फसीह कलाम आम बोल चाल में तो हो जाती है गलती, लेकिन ये जो हम अरबी के अंदर मुख्तलिफ लोगों का कलाम नकल करते हैं, खुसूसन शायरों के अशआर नकल किए जाते हैं कि देखो ये कितने फसीह अशआर हैं या फलां का कितना फसीह खुतबा है, तवज्जो है, तो उसमें अगर गलतियां होंगी तो फिर तो उसको कोई भी नकल नहीं करेगा। और शायर शेर कह रहा है उसमें एक लफ्ज ले आया, फिर आगे गलती की वजह से दूसरा लफ्ज कभी वो लाएगा नहीं, वो बदलुल गलत की गुंजाइश अपने कलाम में रखते ही नहीं। फसीह कलाम में गलती की गुंजाइश नहीं होती भाई। तो अगर मुस्तस्ना मुनकत्या को आप बदल भी बनाना चाहें तो कौन सा बदल बनेगा? बदलुल गलत बनेगा, और फसीह कलाम में गलती की गुंजाइश नहीं। बल्कि साहिब जामी आपको मजीद बतलाएंगे कि भाई ये जो मुस्तस्ना मुनकत्या होता है वो इंतहाई जहानत और समझदारी की वजह से लाया जाता है। फसीह कलाम में मुस्तस्ना मुनकत्या जो लाया जाता है वो किस वजह से लाया जाता है? इंतहाई गौर व फिक्र और समझदारी के बाद लाया जाता है। और अगर आप इसको बदल बनाएंगे तो बदल उल गलत बनेगा, और बदल उल गलत समझदारी की वजह से आता है या गलती की वजह से आता है? गलती की वजह से। तो देखो मुस्तस्ना मुनकत्या जो है वो तो समझदारी और जहानत की वजह से लाया जाता है, लिहाजा उस पर नसब ही पड़ेंगे। अगर आप उसको बदल बनाना भी चाहें फिर तो वो बदल उल गलत बनेगा, और बदल उल गलत तो किस लिए लाया जाता है? गफलत की वजह से लाया जाता है। तो दोनों बिल्कुल एक दूसरे के मुतजाद हो गए। एक चीज ना समझी की वजह से हो और एक चीज इंतहाई जहानत की वजह से हो, यह तो नहीं हो सकता। बात भी समझ में आ रही है कि नहीं? क्या कि मुस्तस्ना मुनकते पर क्या पढ़ेंगे? हमेशा नसब। अगर आप नसब के साथ दूसरा एराब भी अगर जायज करार देंगे तो वह कौन सा बनता है? बदल का। और फिर बदल भी कौन सा बनेगा? बदल उल गलत बनेगा। और बदल उल गलत किस वजह से होता है? ये बदल उल गलत गलती की वजह से होता है, यानी गफलत की वजह से होता है। हालांकि मुस्तस्ना मुनकते जो है वो तो गफलत की वजह से नहीं किया जाता, वो तो इंतहाई समझदारी की वजह से किया जाता है। बात समझ में आ गई? अभी भी बात आपको शायद समझ में ना आई हो कि मुस्तस्ना मुनकते इंतहाई समझदारी की वजह से क्यों किया जाता है। वजह यह कि आपके जहन में वो मिसाल है, जा अनिल कौम इल्ला हिमारन, यह हिमारन कोई समझदारी की वजह से लाए है नहीं, ये तो वैसे आपको समझाने के लिए मिसाल लेकर आए हैं। तवज्जो है। हां, आप अरब के अशआर उठाएंगे वहां आपको मुस्तस्ना मुनकत्या की मिसालें मिलेंगी, आप उनकी जहानत पर हैरान रह जाएंगे। मसलन एक मिसाल है, जरा अपने सामने एक मिसाल लिखो, जल्दी कीजिए। ला ऐब फीही, ला ऐब फीही गैर अन्नहु शुजाउन, गैर अन्नहु शुजाउन। लिख लिया? बस अब इस मिसाल पे जरा नजर रखें। ला ऐब फीही, कोई शायर किसी की तारीफ मसलन कर रहा है, ला ऐब फीही उस शख्स में कोई ऐब नहीं है, गैर अन्ना मगर एक बात है। सुनने वाला समझता है माकबल में सारे ऐबों की नफी कर दी, अब उसके बाद उनमें से कोई ऐब निकाल कर क्या करेगा? साबित करेगा। आगे वो कहता है गैर अन्नहु शुजाउन, मगर एक बात है कि वो बहादुर है। अब अव्वलन जहन में ये आया कि शायद अब कोई बुरी सिफत आ गई आएगी, लेकिन जरा गौर किया, ओहो माकबल में भी सिफत है उसमें कोई ऐब नहीं, और गैर अन्नहु शुजाउन मगर ये कि वो बहादुर है, तो गैरा के बाद भी तारीफ कर दी। गैरा से पहले भी तारीफ थी, गैरा के बाद भी तारीफ कर दी, गोया तारीफ दर तारीफ कर दी उसने। गोया कहने वाला यह कहना चाहता है कि मैं जिस शख्स की तारीफ कर रहा हूं उसमें कोई ऐब नहीं है दुनिया का, हां एक ऐब है उसमें, और वो क्या है? बहादुरी है। लेकिन पता चला बहादुरी तो ऐब है ही नहीं, बहादुरी तो सिफत कमाल है, लोग इस पर फख्र करते हैं। मालूम हुआ कहने वाला यह कहना चाहता है कि मैं जिस शख्स की तारीफ कर रहा हूं उसमें कोई ऐब नहीं, उसमें ऐब होने की एक ही सूरत है कि आप बहादुरी को ऐब मान लें, आप बहादुरी को ऐब मान लें फिर उसमें ऐब हो सकता है, और बहादुरी को तो कोई भी ऐब नहीं मानता। मालूम हुआ मैं जिसकी तारीफ कर रहा हूं उसमें कोई ऐब हो ही नहीं सकता। तवज्जो है। अब देखो ये कितनी जहानत वाला कलाम है भाई। माना समझ में आ गया? तो मालूम हुआ कि मुस्तस्ना मुनकते हमेशा मंसूब होगा। अगर कोई और एराब आप लाना भी चाहें तो बदल हो सकता है, लेकिन बदल का यहां तसव्वुर नहीं किया जा सकता। क्योंकि यहां वो बदलुल गलत ही बन सकेगा, और बदलुल गलत का सबब क्या बनता है, वो गलती और गफलत बनती है, भूल चूक जो है वो उसका सबब बनती है, जबकि मुस्तस्ना मुनकते का सबब तो जहानत और समझदारी होती है भाई फसीह कलाम के अंदर। बात समझ में आ गई, मालूम हुआ मुस्तस्ना मुनकते को बदलुल गलत भी करार नहीं दे सकते, तो मालूम हुआ बदल की कोई भी सूरत मुमकिन नहीं है, तो उस पर नसब पढ़ना ही वाजिब होगा। तकरीर समझ में आ गई, कहते हैं इज ला यू तसव्वर। अच्छा फिर देखें, फल मुनकतिउ मुतलकन मनसूबुन इंदहुम, तो मुस्तस्ना मुनकतिउ जो है वो अक्सर नहवियों के नजदीक मुतलकन मनसूब होगा। इज ला यू तसव्वरु फीही इल्ला बदलुल गलती, इसलिए क्योंकि मुस्तस्ना मुनकते के अंदर तसव्वुर नहीं किया जा सकता मगर सिर्फ बदलुल गलत का, उसी का तसव्वुर हो सकता है। वह हुआ ला यसदुरु इल्ला बि तरीक सहवी वल गफलती, सदरा यसदुरु के माने सादिर होना, पेश आना, बि तरीक सहवी, सहव कहते हैं भूल चूक को भाई, गलती को। वह हुआ ला यसदुरु, और बदलुल गलत जो है वो पेश नहीं आता, इल्ला बि तरीक सहवी वल गफलती मगर भूल चूक और गफलत के तरीके पर। वल मुस्तस्नल मुनकतिउ इन्नमा यस्दुरु बितरीक़ि रवियति वल फतानति, और मुस्तस्ना मुनकते वो तो सादिर होता है बितरीक़ि रवियति वल फतानति। रविया कहते हैं गौर व फिक्र को, किसको, गौर व फिक्र को, और फतानत कहते हैं जहानत और समझदारी को। तो कहते हैं वल मुस्तस्नल मुनकतिउ इन्नमा यस्दुरु बितरीक़ि रवियति वल फतानति, और मुस्तस्ना मुनकतिउ वो तो सिर्फ गौर फिकर और समझदारी के तरीके पर ही सादिर होता है। यह था अक्सर अहले हिजाज की लुगत के मुताबिक। हां बनु तमीम वाले भाई जब अक्सर एक तरफ हो गए तो कुछ दूसरी तरफ भी तो हैं, वो कौन है, वो अब बतलाने लगे वो बनु तमीम हैं, वो मुस्तस्ना मुनकते में बाज सूरतों में बदल की भी गुंजाइश देते हैं। आप नसब भी पढ़ सकते हैं और बदल भी बना सकते हैं, किसके अंदर, मुस्तस्ना मुनकतिउ की बात चल रही है उसके अंदर भाई। तो कहते हैं वह अम्मा बनु तमीम, भाई याद रखें आपको बतलाएंगे कि बनु तमीम जो है मुस्तस्ना मुनकतिउ की दो किस्में बनाते हैं। मुस्तस्ना मुनकते के अंदर बास किस्मों के अंदर मुस्तस्ना मिनहू को हजफ करना जायज होगा, और बास सूरतें वो होंगी जहां हजफ करना जायज नहीं, तो वह दो किस्में बना लेते हैं। तवज्जो है, बनु तमीम वाले मुस्तस्ना मुनकते की तकसीम करते हैं कि मुस्तस्ना मुनकते दो किस्म पर है, एक वो किस्म जिसमें मुस्तस्ना मिनहू को हजफ भी कर दें तो कलाम का माना खराब नहीं होता, और एक वो किस्म जहां मुस्तस्ना मिनहू को हजफ करें तो कलाम का माना ही खराब हो जाता है। तो वो किस्म जिसमें मुस्तस्ना मिनहू को हजफ करें तो भी कलाम का माना खराब नहीं होता, वहां वो बदल भी जायज करार देते हैं, वो बदल भी जायज करार देते हैं। मसलन देखो, मैं कहता हूं जैसे यह किताब की मिसाल है, मा जा अनिल कौमो इल्ला हिमारन, तवज्जो है, मा जा अनिल कौमो इल्ला हिमारन, यह अल कौम क्या है, मुस्तस्ना मिनहू, और हिमार क्या है, मुस्तस्ना, और कौन सा मुस्तस्ना है, मुनकतिउ है, और इसके अंदर अल कौम को हजफ कर दें फिर भी कलाम गलत नहीं होता, उसका माना सही रहता है। मा जा अनी इल्ला हिमारन, मा जा अनी इल्ला हिमारुन, तवज्जो है, तो इस सूरत में फिर वो यानी मा जा अनिल कौमु इल्ला हिमारन, ये अल कौम को हमने हजफ नहीं किया, जिक्र है, क्या है, जिक्र, इसी सूरत में वो नसब भी जायज कहते हैं और बदल भी जायज कहते हैं। मा जा अनिल कौमु इल्ला हिमारन और मा जा अनिल कौमु इल्ला हिमारुन दोनों जायज कहते हैं। तवज्जो है, किस मुस्तस्ना की बात हो रही है, मुनकतिउ की, और इसमें वो किस्म है जिसमें मुस्तस्ना मिनहू को हजफ भी किया जा सकता है। भाई अगर हजफ कर लेंगे ना, हजफ कर लेंगे फिर तो हिमारुन फाइल बन जाएगा भाई, मा जानी इल्ला हिमारुन, तवज्जो है, हां वो ये नहीं कह रहे कि हजफ करेंगे उसको, ये कह रहे हजफ करना जायज हो, हजफ करना जायज, जब हजफ करना जायज है यानी है मौजूद मुस्तस्ना मिनहू लेकिन हजफ भी किया जाए तो कलाम खराब नहीं होता, तो जब मुस्तस्ना मिनहू मजकूर हो तब बाकी सारे क्या कहते हैं, मा जा अनिल कौमु इल्ला हिमारन पढ़ेंगे, और ये क्या कहते हैं, हिमारन भी पढ़ सकते हो और हिमारुन भी पढ़ सकते हो, फर्क समझ में आया। और दूसरी किस्म जिसमें मुस्तस्ना मिन्हू को हजफ करना जायज नहीं, यानी वो मुस्तस्ना मुनकत्या जहां मुस्तस्ना मिन्हू को हजफ करना जायज नहीं, उसमें वो भी बाकियों के साथ हैं, कहते हैं कि नसब पढ़ना वाजिब है। लेकिन इस किस्म के अंदर नसब और बदल दोनों की गुंजाइश देते हैं ये भाई। कहते हैं वह अम्मा बनू तमीम इन फकद कसमुल मुनकतिया इला किस्मैनी, बाकी बनू तमीम वाले तो उन्होंने तहकीक तकसीम किया है मुस्तस्ना मुनकतिया को दो किस्मों की तरफ। अहदुहुमा, उन दो किस्मों में से एक यह है कि मा यकूनु कबलहू इस्मु यसिहु हस्फुहू, मा यकूनु ऐसा मुस्तस्ना, मा यकूनु कबलहू इस्मुन ऐसा मुस्तस्ना कि उससे माकबल क्या हो, ऐसा इसम हो, यसिहु हज़्फुहु कि जिसको हजफ करना सही हो। इस्मुन नकेरा आया और उसके बाद यसिहु फेल आया, और नकेरा के बाद फेल आए तो उसके लिए क्या बनता है, सिफत। और मौसूफ सिफत का तर्जमा कैसे करते हैं, मौसूफ से पहले ऐसा या ऐसी का लफ्ज लाते हैं। देखो फिर तर्जमा सुनो, कहते हैं अहदुहुमा मा यकूनु कबलहु इस्मु यसिहु हज़्फुहु, उन दोनों में से एक वो है कि जिससे मा कबल ऐसा इसम हो जिसको हजफ करना सहीह हो। नहु मा जा अनिल कौमु इल्ला हिमारन, नहीं आए मेरे पास वो लोग इल्ला हिमारन मगर गधा। अब देखो दूसरी मिसाल ले लो, मा जा अनी जैदुन इल्ला अमरन, मा जा अनी जैदुन, मेरे पास जैद नहीं आया इल्ला अमरन। अब मुझे आप बताइए ये कौन सा मुस्तस्ना है, क्या ये अमर जैद में दाखिल था, नहीं, तो मालूम है ये मुस्तस्ना मुनकतिया है। मा जानी जैदुन इल्ला अमरन, तो अब इसमें से अगर हम जैद को हजफ भी कर दें तो भी कलाम सही रहता है। मा जानी इल्ला अमरुन, मा जानी इल्ला कलाम फिर भी सही है, मेरे पास सिर्फ जैद आया। तो ये जो कलाम है मा जा अनी जैदुन इल्ला अमरन, इसके अंदर बनू तमीम वाले कहते हैं अमरन पढ़ना भी सही और इसको बदल बनाना भी सही है भाई। तो कहते हैं नहु मा जा अनिल कौमु इल्ला हिमारन फहा हुना युजविजून अल बदला, तो यहां पर वो बदल जायज करार देते हैं। बदल को वाजिब नहीं कहते, नसब भी पढ़ सकते हो और बदल भी बना सकते हो, यह माना है। फहा हुना युजब विजून अल बदला, तो यहां पर बनू तमीम वाले बदल को जायज करार देते हैं। वसानी हिमा, और दूसरी किस्म जो है मुस्तस्ना मुनकतिया की, मा ला यकून कबल हुस्मु यसिहु हज़्फुहु, कि जिसमें मुस्तस्ना मुनकतिया से मा कबल ऐसा इसम न हो जिसको हजफ करना सही हो, यानी उसको हजफ नहीं कर सकते वरना तो माना खराब हो जाता है। फहुम हाहुना युवाफिकून अल हिजाजीना, तो वो जो बनू तमीम वाले हैं वो यहां पर मुआफकत करते हैं अहले हिजाज वालों की। वो अहले हिजाज वाले क्या कहते थे, नसब वाजिब, तो ये भी यहां क्या कहते हैं, नसब वाजिब है। तो कहते हैं फहुम हाहुना युवाफिकून अल हिजाजीना, तो बनू तमीम वाले यहां पर यानी इस किस्म के मकाम के अंदर अहले हिजाज वालों की मुआफकत करते हैं। भाई किस चीज में मुआफकत करते हैं, कहते हैं फी ईजाबी नस्बी ही, मुस्तस्ना के नसब के वाजिब होने में, कि इस किस्म के मकाम में मुस्तस्ना मुनकते पर नसब वाजिब है। ये माना है फी ईजाब नस्बी ही, मुस्तस्ना मुनकते के नसब के ईजाब के बारे में। कौल ही ताला, जैसे कि अल्लाह ताला का ये कौल है, ला आसिमल यौम मिन अम्रिल्लाह इल्ला मन रहिम, ला आसिमल यौम, ये हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा, उनका बेटा किनान जो ईमान नहीं लाया था और तूफान नूह शुरू हो गया और पानी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता चला जा रहा है, तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा कि तुम ईमान ले आओ, आ जाओ किश्ती में सवार हो जाओ। उसने कहा कि मैं किसी पहाड़ पर क्या पनाह ले लूंगा, पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम जवाब में फरमाने लगे, ला आसिम अल यौमा, आज कोई बचाने वाला नहीं है, मिन अम्रिल्लाही अल्लाह के हुक्म से, इल्ला मन रहिम, मगर वो जिस पर अल्लाह रहम फरमा दे, जिस पर अल्लाह रहम फरमा दे वो ही बचेगा आज। और वो अल्लाह ने किन पर रहम फरमाया, जो अहले ईमान थे, भाई किश्ती में सवार थे। तो कहते हैं ला आसिम अल यौम मिन अम्रिल्लाह इल्ला मन रहीम, आज के दिन कोई बचाने वाला नहीं अल्लाह के हुक्म से मगर वो जिस पर अल्लाह रहम फरमा दे। तो देखो इल्ला मन रहीम, इल्ला आया और इल्ला के बाद मन रहीम आया, ये मुस्तस्ना मुनकतिया है। ये क्या है? मुस्तस्ना मुनकतिया है। असल में याद रखो ये मन मौसूला है और रहीम उसका सिला है, मगर वो शख्स रहीमा के वो अल्लाह, रहीमा के अंदर हुआ जमीर जो अल्लाह को राजे है, मगर वो शख्स रहीम के अल्लाह रहम फरमा दें, तो सवाल पैदा होता है कि मन मौसूला है और ये रहीम इसका सिला है और मौसूल और सिले के दरमियान रबत चाहिए। क्या चाहिए? रबत, कोई जमीर होनी चाहिए जो इसमें मौसूल की तरफ लौटे। तो साहिब जामी आगे फरमा रहे हैं ऐ मन रहिमहुल्लाहु, देखो रहिमहु हा जमीर निकाल ली यहां पर, ये यानी मफूल की जमीर यहां पर महजूफ है और वो आईद है, वो मन की तरफ लौट रही है। और आप हिदायत नह में पढ़ चुके हैं कि जब सिले के अंदर आईद जो है वो मफूल यानी फजला वाके हो, जब वो मफूल वाके हो यानी फजला हो जायद हो, तो उसको हजफ करना भी जायज है। तवज्जो है भाई, कलाम के लिए फेल के लिए हमेशा फाइल या नाई फाइल चाहिए, उससे मिलकर कलाम ताम हो जाता है। बाकी ये मंसूबात क्या हैं? फजला हैं, जायद चीजें हैं, इनको हजफ भी किया जा सकता है। तो असल में कलाम गोया यूं है इल्ला मन रहिमहू, इल्ला मन रहिमहू, उस हा जमीर वो आयद थी लेकिन मफूल भी ही की जमीर है, इसलिए उसको हजफ कर लिया गया। और नीज रहीम के अंदर जमीर किसको राजे है? अल्लाह को, इसीलिए आगे कहा ऐ मन रहिमहुल्लाह, मगर वो जिस पर अल्लाह रहम फरमा दें, और जिस पर अल्लाह रहम फरमा दें वो हुआ मरहूम, उस पर रहम किया गया है ना, वो मरहूम हुआ और वो मासूम हुआ यानी वो महफूज हुआ, अल्लाह ने उसकी क्या कर ली? हिफाजत कर ली। तवज्जो है जी। तो इधर देखिए, तो मन रहिमहुल्लाह, जिस पर अल्लाह रहम फरमा दे वो मरहूम हुआ यानी उस पर रहम किया गया है, और वो मासूम हुआ, मासूम का माना महफूज, मासूम का क्या माना? आसिम इस्मत, इस्मत का माना हिफाजत भाई, आसिम हिफाजत करने वाला, और मासूम जिसकी हिफाजत की गई है। तो मन रहिमहु, मन रहिमहुल्लाह, जिस पर अल्लाह रहम फरमा दे वो मरहूम हुआ, और मरहूम कौन है? वो महफूज है, अल्लाह उसको बचा लेंगे। तो मालूम हुआ मन रहीम जो है ये मासूम की बात चल रही है, और माकबल में आसिम का जिक्र आया था, आसिम का जिक्र आया था, और आसिम का तो माना है बचाने वाला, आसिम और है मासूम और है, लिहाजा इल्ला के बाद मासूम का जिक्र है, और ये मासूम और आसिम तो अलग अलग हैं, ये मासूम उस आसिम में दाखिल नहीं क्योंकि ये अलग है। तो मालूम हुआ यह मुस्तस्ना मुनकतिया हुआ, बताना ये चाहते हैं ये मुस्तस्ना मुनकतिया है। किस तरह मुस्तस्ना मुनकतिया है? क्योंकि मन रहीम से कौन मुराद है? वो शख्स जिस पर अल्लाह ने रहम किया, और जिस पर अल्लाह ने रहम किया वो क्या होगा? मासूम होगा, वो महफूज है, वो इस तूफान से बचा लिया गया है। और माकबल में मासूम का जिक्र है या आसिम बचाने वाले का जिक्र है? आसिम का जिक्र है। तो मालूम हुआ मासूम तो आसिम के अंदर दाखिल नहीं है, तो ये फिर कौन सा मुस्तस्ना हुआ? मुस्तस्ना मुनकतिया हुआ भाई। तो कहते हैं आगे देखिए, फमन रहिमहुल्लाहु हुवल मरहूमुल मासूम, बस जिस पर अल्लाह ने रहम फरमा दिया वो मरहूम है और मासूम है यानी महफूज है। फला यकूनु दाखिलन फिल आसिमी, तो ये मासूम जो है तो फिर ये दाखिल नहीं है आसिम के अंदर। फयकूनु मुनकतियान, तो ये मुस्तस्ना कौन सा हुआ? मुनकतिया हुआ। तवज्जो है। और याद रखो बात चल रही है बनु तमीम की। बनु तमीम कहते थे कि बा सूरतों में इल्ला से माकबल उस इसम को हजफ करना जायज है, यानी मुस्तस्ना मिनहू को हजफ करना जायज है, और बा सूरतों में जायज नहीं। यहां पर भी जायज नहीं है, यहां पर भी, यहां पर यह आसिम को हजफ करना जायज नहीं। भाई क्यों नहीं जायज? वजह यह कि यह लाए नफी जींस है, यह आसिम इसका इसम है। जैसे आप कहते हैं ला रजुला फी दारी, कोई आदमी घर में नहीं, तो ये आसिम ला नफी जींस का इसम है, और खबर इसकी महजूफ है। ला आसिमल यौमा मौजूदुन, ला आसिमल यौमा, या आखिर में निकाल लें ला आसिमल यौमा मिन अमरिल्लाह मौजूदुन, अल्लाह के हुक्म से बचाने वाला आज कोई मौजूद नहीं है। तो ला आसिमा, यह आसिम क्या है? ला नफी जींस का इसम, और मौजूदुन खबर क्या है? महजूफ है। तो अब इस आसिम को हजफ नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि इस सूरत में तो अल्लाह के अमल को आपने बिल्कुल ही खत्म कर दिया, उसकी खबर पहले ही महजूफ है, और आप इसम को भी क्या कर दें? हजफ कर दें, तवज्जो है, तो ला अकेला रह जाएगा, ना उसका इसम इबारत में मौजूद है और ना उसकी खबर इबारत में मौजूद है, लिहाजा इस आसिम को हजफ करना जायज नहीं, तो इसको हजफ करना जायज नहीं, तो लिहाजा इसके अंदर नसब पढ़ना ही वाजिब वो कहते हैं। जिसमें मां कबल वाले इसम को हजफ करना जायज था, वहां वो कहते थे नसब भी पढ़ सकते हो और बदल भी बना सकते हो मुस्तस्ना मुनकते में, और जहां इसम को हजफ करना जायज नहीं तो वहां वो कहते हैं कि बदल बनाना जायज नहीं, फिर नसब ही पढ़ेंगे। तो यहां पर भी मन रहीम, ये मन इसमें मौसूल, ये महलन मनसूब है, क्योंकि इसमें मौसूल है और इसमें मौसूल किसमें से है, मबनियात में से है, और मबनी पर एराब कैसे आता है, महलन, तो ये महलन मनसूब है। बात समझ में आ गई, मुस्तस्ना मुनकते है भाई, और ऐसा मुस्तस्ना मुनकते है कि माकबल वाले इसम को हजफ करना जायज नहीं। बात समझ में आ गई, जबकि बाज उलमा ने इसको मुस्तस्ना मुत्तसिल ही बनाया है। क्या बनाया है? मुस्तस्ना मुत्तसिल बनाया है। इन्होंने तो मुस्तस्ना मुनकते बना दिया, लेकिन मुस्तस्ना मुत्तसिल बनाने की भी सूरत है। किस तरह? कि इल्ला मन रहीम, मन रहीम से कौन मुराद था? मरहूम, जिस पर रहम किया गया। कहते हैं नहीं, मन रहीम से अल्लाह की जात मुराद ले लो। मन रहीम वो जात जो रहम करती है, वो जात जो रहम करती है। हां, जमीर अलग निकालने की जरूरत ही नहीं है, इसके अंदर रहीम के अंदर हुआ जमीर ही मन की तरफ लौटा दो, यही सिला बन गया। इल्ला मन, मगर वो जात रहीम जो क्या करती है, रहम करती है। तो देखो, मन रहीम से कौन मुराद हुए? अल्लाह, और अल्लाह आसिम है या मासूम है? आसिम है, और माकबल में भी, माकबल में भी किसका जिक्र? आसिम का। तो ये मुस्तस्ना मुत्तसिल हो गया। ये एक तकरीर है, और बाजों ने और तकरीर की। वो फरमाते हैं कि मन रहीम से तो मरहूम और मासूम ही मुराद है, लेकिन पीछे जो आया ना ला आसिम, कहते हैं ये आसिम भी बमाने मासूम के है, ये आसिम भी बमाना मासूम के, ताकि ला मासूम अल यौमा, आज के दिन कोई महफूज नहीं है, इल्ला मन रहीम, मगर वो जिस पर अल्लाह रहम फरमा दें वो मासूम होगा, वो महफूज होगा। भाई तो मां कबल में भी मासूम का जिक्र, मां बाद में भी मासूम का जिक्र, तो ये कौन सा मुस्तस्ना हुआ? मुत्तसिल हुआ। बात समझ में आ गई। फिर इश्काल होता है कि आसिम बमाने मासूम के आपने कैसे ले लिया? आसिम इसमें फाइल है, मासूम इसमें मफूल है। कहते हैं भाई कलाम अरब में ऐसा भी होता है, कभी कभार इसमें फाइल इसमें मफूल के माना में होता है, और कभी कभार इसमें मफूल इसमें फाइल के माना में भी होता है। जैसे दाफिक बमाने मदफूक के है, इंसान के बारे में अल्लाह क्या फरमाते हैं? खुलिका मिम्मा इन दाफिक, इंसान को पैदा किया गया है मिम्मा इन ऐसे पानी से, दाफिक ऐ मदफूकुन, जिसको उछाला गया है, मुराद मादा मनविया है, जिसको उछाला गया है। तो यहां दाफिक किस माना में है? मदफूक के माना में है। तो इसी तरह यहां पर भी आसिम किस माना में है? मासूम के माना में है। बात समझ में आ गई। चलिए बस करें भाई, हासिल कलाम ये कि एक सूरत तो नसब वाली गुज़श्ता सबक में आई थी कि मुस्तस्ना मनसूब होगा वजूबन जब वो इल्ला के बाद आए, और किस में हो? कलामे मुजब में हो। और दो सूरतें आज हमने पढ़ ली कि अगर मुस्तस्ना मुस्तस्ना मिन्हू पर मुकद्दम हो जाए तो उस सूरत में भी वो वजूबन मनसूब होगा, और नीज मुस्तस्ना मुनकत्या हो तो वो भी अक्सर अक्सर नहवियों के नजदीक मनसूब ही होगा। इल्ला बनु तमीम वाले, कि बनु तमीम वाले जो हैं वो कहते हैं कि मुस्तस्ना मुनकते दो किस्म पर है। एक वो मुस्तस्ना मुनकते कि जिसमें इल्ला से माकबल इसम को हजफ करना जायज होगा, और एक वो जिसमें जायज नहीं। तो जिसमें हजफ करना जायज है और माना फिर भी खराब नहीं होता, वहां वो नसब के साथ साथ बदल भी जायज करार देते हैं, और जहां माकबल को हजफ करना जायज नहीं, उससे माना खराब हो जाता है, तो वहां वो भी अहले हिजाज की मुआफकत करते हैं और कहते हैं कि यहां सिर्फ नसब ही पढ़ना जायज है। बात समझ में आ गई। और फिर दरमियान में आपने ये भी पढ़ा कि ये मुस्तस्ना मुनकतिया जो है, अगर इसको बदल बनाया भी जाए तो यह ज्यादा से ज्यादा बदल उल गलत बन सकता है, और बदल उल गलत वो तो वो तो गफलत की वजह से होता है, तो मुस्तसना मुनकते के बारे में इसका तसव्वुर नहीं किया जा सकता भाई, इसलिए क्योंकि कलाम फसीह के अंदर जो मुस्तसना मुनकते वाक्य होता है वो गलती और भूल चूक की वजह से नहीं आता, बल्कि वो तो इंतहा दर्जे की जहानत और गौर व फिक्र की वजह से मुस्तसना मुनकते को लाया जाता है। बात समझ में आ गई। चलिए बस भाई, हादा हुवल मराम, वल्लाहु आलम बिहकीकतिल कलाम।